तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय का श्लोक संख्या 12 अध्याय का शीर्षक है महाराज प्रिय व्रत का चरित्र। श्लोक की आवृत्ति करेंगे। न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै परतः सतो वा नैवार्थ धर्मै परतः सतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात् कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात् न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै परतः सतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात् न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै परतः सतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात् न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै परतः सतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात् न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै परतः सतो वा कृतं विहन्तुं तनुभेद् विभूयात्।
Yeah.
माता जी शब्दार्थ न कभी नहीं तस्य उसका कश्चित कोई भी तपसा तप से विद्या विद्या से वा अथवा न कभी नहीं योग जोग बल से वीरेण शारीरिक बल से मनीषया बुद्धि से वा अथवा न कभी नहीं एव निश्चय ही अर्थ भौतिक ऐश्वर्य से धर्मई धर्म से परत किसी बाह्य शक्ति से स्वतः अपने प्रयास से वा अथवा कृतम आज्ञा विहंतुम टालने में तनुभृत भौतिक देह स्वीकार करने वाला जीवात्मा विभूयात समर्थ है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल वैदिक शिक्षा योग बल शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या अन्य पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हम लोग दोहराएंगे, भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल से वैदिक शिक्षा योग बल शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या न पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती नहीं दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तात्पर्य, गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतत्सेवा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्या चंद्रम अशो विधृतौ तिष्ठतः। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके वश में हैं। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है वह भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां सम्मिलित हैं, किंतु तथाकथित वैज्ञानिकों की इंद्रिय गतिविधियां निरर्थक लगती हैं, क्योंकि ये ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। भगवद गीता 7:14 में इसकी पुष्टि होती है, मम माया दुरत्तया, प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप त्याग तथा जोग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे जोग शक्ति से हो, वैज्ञानिक शिक्षा से हो अथवा तपोबल से हो, यह असंभव है। यहाँ मनीषया शब्द का विशेष महत्व है। प्रिय व्रत तर्क कर सकते थे कि ब्रह्मा उनसे गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने तथा भौतिक मामलों में न उलझने का आदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए, यह प्रिय व्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि दोनों ही प्रामाणिक महाजन हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनीषया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसे सूचित होता है कि नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने के लिए अधिकृत थे। अतः प्रिय व्रत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत अस्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण सम्बन्धे युक्तम् वैराग्यम् उच्यते। विषयान् अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा से जोड़ दी जानी चाहिए, यही वास्तविक बुद्धि है। यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है तो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकारक नहीं है। इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह संसार मिथ्या है और केवल पर ब्रह्म ही सत्य हैं, किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का बुद्धिमान भक्त इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी भगवान ने सृष्टि की है वह मिथ्या कैसे हो सकती है, किंतु सुख के लिए इसका उपयोग अवश्य ही मिथ्या है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5:29 में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान के भोग के निमित्त है। भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता हैं, अतः उनके भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए प्रत्येक वस्तु का उपभोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए, अपनी बुद्धि का यही उचित उपयोग है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदेहम श्री गुरु श्री तपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की इस अध्याय में प्रिय व्रत के चरित्र का उद्घाटन किया गया है। इस अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित महाराज श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं कि एक महान भक्त विरक्त जो व्रतों में अनेक अनुष्ठानों में जिसकी रुचि हो वो कैसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर गृहस्थी जो गृह अंध कूपम कहा गया है गृह कारज नाना जंजाला ऐसे विरक्त जो अपने जीवन को आध्यात्मिक स्तर पर प्रशस्त कर लिया है वह व्यक्ति पुनः क्यों गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। जिज्ञासा से परीक्षित महाराज के जिज्ञासा से अध्याय प्रारंभ होता है। प्रिय व्रत का अर्थ होता है जिसको व्रत ही प्रिय लगता हो, जिसको घर गृहस्थी या सांसारिक सुख उपलब्धि में रुचि न हो, जिसको केवल भगवान के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम भक्ति के ही अंगों में जो रुचि रखता है या व्रतों के पालन में जो रहता है वह प्रिय व्रत है। जिसको व्रत ही प्रिय है वही प्रिय व्रत है। ऐसे व्रतधारी परीक्षित प्रिय व्रत पुनः क्यों गृहस्थ धर्म में गए प्रश्न है, राजा का प्रश्न है। राजोवाच प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने अनेक विशेषण से कह रहे हैं। प्रिय व्रतो जिनको व्रत ही प्रिय है या जो व्रतधारियों में भी सबसे बड़ा व्रत धारण किया है कि भगवान के कांतिक चरणों में प्रेम करने के लिए जो जंगल का आश्रय लेकर के भजन करता है वो पुनः क्यों गृहस्थ धर्म में आया। आत्मा राम जो आत्मा में ही रमण करता है, गृहे और मतः यन्मूल कर्म बंध पराभव। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे मुनिवर परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रिय व्रत ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया, जो कर्म बंधन का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। गृहस्थ जीवन में बहुत कम लोग ही आत्म साक्षात्कार की ओर प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि भोजपुरी में एक मुहावरा है कि जब घर गृहस्थी में आदमी बन जाता है, गृहस्थ बन जाता है, तो सब कुछ भूल जाता है। उसको केवल घर की आवश्यकताओं के विषय में ही ज़्यादा अनुभव होता, स्मरण होता है कि ये चीज़ नहीं है, ये है। तो लोग कहते हैं कि तीन चीज़ याद भइल नून तेल लकड़ी, भूल गई बना पाटी आ भूल गई चतुरी, आ तीन चीज़ याद आइल नून तेल लकड़ी। अब तो गैस पर लोग खाना बनाते हैं, पहले लकड़ी पर लोग खाना बनाते थे। तो लकड़ी जंगल में जाना है या मार्केट से लाना है, या तेल नहीं है, नमक नहीं है, चावल है, दाल है, अनेक चीज़ें घर में रहती हैं। घर में सुई से ले करके धान काटने के लिए हंसिया है, कुदाली है, फरसा है, रस्सी है, पगहा है, नेती, बहुत चीज़ें घर में रहती हैं। अब खाना बनाने में कितना चीज़ लगता है, कढ़ाई है, कलछल है, बटुआ है, बटुली है, कटोरी है, चम्मच है, गिलास है, हल्दी है, नमक है, जीरा है, मिर्च है, कितना मसाला है। और उसको अलग अलग रखना और समय से पहले उसको मंगाना, नमक ख़त्म होता है तो पहले ही स्त्रियां मंगाती हैं। घर में जितना कार्य है और जितनी वस्तुओं का प्रयोग होता है, उसको संभालना और समय से पहले ले आना गृहस्थ में जीवन में रोज़ ज़रूरतें होती हैं। तो इसलिए जब कोई गृहस्थ बन जाता है तो उसको लोग कहते हैं कि भूल गई बना पाटी, भूल गई चतुरी, आ तीन चीज़ याद आई नून तेल लकड़ी, यही याद आता है। प्रथम झारखंड प्रीचिंग में हम गए थे 89 में, तो झारखंड प्रीचिंग का समापन हो रहा था, एक दिन और था, एक दिन और शेष था। तो झारखंड के जंगल से हम लोग उतर रहे थे पहाड़ी से, तो गौरकृष्ण महाराज से मैं कहा, उस समय प्रभु जी थे, मैं कहा गौरकृष्ण प्रभु और मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। तो बोले कहिए। मैं कहा कि मैं, हमारा रिजल्ट आ चुका है बीए का, ला में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे वकील बनने की बड़ी इच्छा थी। तो कहे कि थोड़ा रुके और कहे कि वकील बनकर क्या करिएगा, वकील बनकर लोग दो काम करते हैं, झूठ को सत्य साबित करना और सत्य को झूठ साबित करना। मान लीजिए वकील का वकील मर्डर किया है, तो वकील जज के सामने यही साबित करेगा कि हमारा जो वकील है वो मर्डर नहीं किया है। तो सत्य को झूठा साबित करना या झूठा को सत्य साबित करना। तो बोले फिर चलिए आगे चलते हैं, वकील बन जाएंगे, कुछ पैसा हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। क्योंकि स्त्री मतलब विस्तृत, स्त्री जो है समस्याओं को एक्सपेंड कर देती है। विवाह होने से पहले आदमी सोचता है एक अलग फ्लैट हो जाए, उसमें सारी साज सामग्री हो जाए। तो कहे कि फिर बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आप क्या सोच रहे हैं कि विवाह होने के बाद, वकील बनने के बाद समस्याओं का अंत हो जाएगा, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे? नहीं, कहे समस्याएं बढ़ती जाएंगी एक के बाद एक के बाद। फिर कहे कि आपके पास क्या है, विचार कीजिए। राजर्षि भरत ससागरा पृथ्वी के सम्राट थे, राजर्षि भरत, उनके शब्दों में ही मैं कह रहा हूँ कि ससागरा पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन युवावस्था में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने साम्राज्य को छोड़ करके कैसे मलवत जंगल में जाकर भजन किए। तो आपके पास क्या है छोड़ने के लिए? तो मेरा जो ये था, दुविधा था, क्या करूं क्या न करूं, दुविधा तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जब एक कहे कि आपके पास क्या त्यागने के लिए है, वो तो इतना बड़ा साम्राज्य युवा अवस्था में परिवार को बच्चों को त्याग कर जंगल में भजन करने के लिए गए, तो मैंने इसे किया कि ठीक है, तब ब्रह्मचारी बनना है। मैंने संकल्प मन में ले लिया कि ब्रह्मचारी अब बनना है, कहा नहीं मन में कहा। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो घर की गृहस्थी इतना उलझनपूर्ण, इतना आवश्यकताओं से, तृष्णाओं से, वितृष्णाओं से आर्त, व्यर्थ, तृणांत, आसक्त आदमी गृहस्थ जीवन में कितना ये हो जाता है, दिनहीन हो जाता है। कभी कभी समस्याएं ऐसी आती हैं बिल्कुल ये हो जाता है, कुछ बोल भी नहीं पाता है। कभी समस्याओं के जाल में ऐसा आदमी घिर जाता है कि क्या करूं, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, एक साथ अनेक समस्याएं आ जाती हैं। और समस्याओं के समाधान के लिए पूंजी कम है, पैसा कम है, तो विचार करता है कि इसको पहले करूं कि उसको पहले करूं, फिर भी उसको सुलझा नहीं पाता है। तो यहाँ पर न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृत विभूयात्। ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी जो महाजन हैं और भगवान के आदेश से जंगल में गए जहाँ पर तप कर रहे थे, और जा करके उनको समझाने के लिए गए कि आप गृहस्थ धर्म प्रवृत्ति मार्ग स्वीकार कीजिए। तो ब्रह्मा जी भगवान के आदेश से गए थे और महादेव जी भी हैं, स्वयंभू मनु उनके पिता भी हैं प्रियव्रत के, और गुरु नारद जी, नारद मुनि पहले से ही हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 12 महाजन हैं जिसमें 4 महाजन वहाँ उपस्थित थे। कौन सा पर्वत था जहाँ तप कर रहे थे? गंधमादन पर्वत के चोटियों में वो भजन कर रहे थे। पहले लोग भजन करने के लिए वन में जाते थे, पंचदशम वनम ब्रजेत। एक हमारे गांव व्यक्ति थे तो कहे कि चौथे पंद्रिप कानन जाहि, लोग चौथे पन में जंगल में जाते थे भजन करने के लिए। लेकिन चौथे तो बचपन में ही चले गए थे, ध्रुव महाराज तो कुमार अवस्था में ही वन में गए थे। तो वो कह रहे थे कि अब लोग मरते दम तक घर में ही रहते हैं और नाती पोतों द्वारा काड़े जाते हैं, लात हाथ से काड़े, जैसे आटा को काड़ा जाता है गुरु से। चौथे पंद्रिप कानन जाहीं, जंगल में जाते थे, अब चौथे पंद्रिप काड़ल जाहीं, माने हाथ पैर से काड़े जाएंगे। वो काड़े जाते हैं, जैसे मिट्टी को कुम्हार रौंदता है वैसे घर में, फिर भी घर से बाहर नहीं जाते हैं। नहीं, पहले के दृष्टांत देखिए, कम उम्र में जंगल में जाकर भजन लोग करते थे, प्रियव्रत कम उम्र में जाकर जंगल का आश्रय लिए थे। अब तो लोग मंदिर में भी आने में डरते हैं। एक लड़का ज्वाइन किया था, मैनी भक्त डायरेक्टर जब था तो एक लड़का ज्वाइन किया, तो मैं कहा कि देखो यहाँ का नियम कानून है कि 3:30 बजे मॉर्निंग में जगना है आपको, स्नान करके कपड़ा पहनकर तिलक लगाकर कपड़ा पहन मंदिर में जाना है, जप करना है, सब बताया, पूरा डे नाइट का शेड्यूल है, फिर रात को क्लास के बाद आपको पढ़कर फिर सोना है। तो कहा कि सब कुछ कर सकते हैं आप, मुझे जो सेवा दीजिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन 3:30 बजे जगने वाला ये काम हमसे नहीं हो सकता। मैं सेवा दिन भर कर सकता हूँ लेकिन मॉर्निंग में जगना हमारे लिए। मैं घर में था तो 1 बजे बाहर से आता था कि नहा धोकर खाता था, कि 3 बजे टीवी देखने बैठता था, कि 4 बजे सोने जाता था, 11 बजे दिन में जगता था। ये हमारा रूटीन है। तो बोला कि हमसे एक काम नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी जो स्वयं एक महाजन है, शिव जी भी महाजन है, नारद जी भी महाजन है, और स्वयंभू मनु भी महाजन है। स्वयंभू मनु के पुत्र हैं प्रियव्रत। ते लोग गए, लेकिन ब्रह्मा जी को संदेह हो रहा था कि शायद प्रियव्रत बात की अवहेलना कर दे, गृहस्थ बनने के लिए शायद उपेक्षा कर दे, अस्वीकार कर दे। तो इसलिए कह रहे कि भगवान के आदेश को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर भगवान की इच्छा है तो आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहिए। भगवान की इच्छा ही बलवती है। गॉड लोग बताते हैं कि आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज। हम अपनी कल्पना या अपनी इच्छा कितना भी कर लें, लेकिन वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। आदमी प्लान करता है, लेकिन उसकी सफलता विफलता भगवान के ऊपर निर्भर रहती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा है तो आपको वही करनी चाहिए। भगवान की इच्छा को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। रूपा जी लिखते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग प्रकृति के नियम को बदलना चाहते हैं। जैसे वो लोग आर्टिफिशियल बादल बनाकर बारिश कराना। महाराष्ट्र में एक बार बारिश नहीं था तो वैज्ञानिक लोग आर्टिफिशियल बादल बना करके वर्षा कराना था, लेकिन नहीं सफल हुआ। रूपा जी कहते हैं कि मम माया दुरत, या भगवान की जो प्रकृति है वो भी, उसके ऊपर भी भगवान का हाथ है, उसके पीछे भी भगवान उसको संचालित करते हैं। तो भगवान की सत्ता को कोई अपने अनुकूल या अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं बना सकता है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। क्योंकि इसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। भगवान कभी कभी हम अपने तप त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति था, आदिवासी था, उसका नाम था माला। झारखंड में एक गांव है चोरपनिया। तो जब वर्षा होता था तो कभी कभी वर्षा कंटिन्यू हफ्ते तक होते रहता था बारिश के समय में, या कभी कभी हमने देखा है 15 दिन, जैसे हथिया नक्षत्र आता है तो लोग 15 दिन के लिए ईंधन या खाने पीने की वस्तु लोग जमा करके रखते थे। वृंदावन चंद जी को मालूम होगा, बिहार में प्राय हम लोग देखे हैं कि हथिया नक्षत्र आने वाला है तो लोग हथिया नक्षत्र में कभी कभी 15 दिन बारिश जो है झकरी जानते हैं आप लोग, वर्षा की झड़ी लग जाते, दिन रात 15 दिन बारिश होते रहता है। तो लोग उसके लिए पूर्व में ही तैयारी कर लेते थे, है ना वृंदावन चंद जी। हथिया नक्षत्र पहले हम लोग बचपन में देखेंगे, बारिश होती तो कंटिन्यू होती रहती थी 15 दिनों तक, तो लोग उसके लिए लकड़ी है या और सामग्री जुटा लेते थे। तो बारिश जब कंटिन्यू होता था तो व्यक्ति भगवान को खूब गाली देता था। उसका नाम माला चौधरी था, आदिवासी है, मर गया बेचारा। तो भगवान को खूब गाली देता था वो, या बारिश ना हो धान सूखा तो भी गाली देता था वो। दूसरे लोग बोलते थे क्या तुम ये कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। जो इच्छा भगवान की, इसमें क्या तुम्हारे चाहने से थोड़े बारिश होगा या नहीं होगा। तो भी भगवान को खूब गाली देता था और अंत में उसको क्या, उसके मुंह में कैंसर हो गया। सही घटना, कैंसर हो गया तो बहुत इलाज हुआ, यहाँ तक कि वृंदावन चंद जी के गांव में, के बगल में गांव है तिलारी, जहाँ के वैद्य थे, आज भी है ना वैद्य तिलारी में, उनके परंपरा में है, उनका लड़का, उन लोग का परंपरा, लड़के का लड़का ऐसे वैद्य रहता है, परंपरा है। तो वो जो मूल वैद्य था वो नहीं, लेकिन उसका परंपरा आज भी लड़के का लड़का ऐसा होता है। तो कोई भी लोग बोलते हैं कि तिलारी में जो वैद्य है वो छू देता है तो भी ठीक हो, ऐसी मान्यता है, ये जानते हैं। एक वहाँ पर और एक और डिहरा गांव है जहाँ हड्डी टूट गया हो या कुछ तो वो भी छू देता है, तभी सांप लोग बोलते हैं, ये सच्ची घटना है, ये जानते हैं। तो किसी का हड्डी टूट गया हो, वृंदावन से भी गए थे हैं, तो जो डिहरा जो वैद्य है उसके परंपरा में अभिशाप है कि तुम लोग किसी को छू दोगे तो ठीक हो, सच्ची भी है। तो तेलारी में भी जो वैद्य है तो उसके यहाँ लोग ले गए, तो उसका मुंह में इतना बड़ा, मतलब बहुत पोस ठीक ही नहीं होता था। तो जो चमत्कारी वैद्य था जो छू देने पर भी कुछ भी देता था ठीक हो जाए, लेकिन वो उसका नहीं ठीक हुआ। तो फिर हमारे गांव में लोग उसको ले आए थे, पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति था। तो जो साथ में थे हम लोग के कजिन ब्रदर थे, तो वो कहे कि ये बहुत भगवान को गाली दिया है इसीलिए इसको ऐसा हुआ है। तो हम भगवान, यह कहने का अभिप्राय है कि या भगवान को चाहे गाली दीजिए, चाहे साप दीजिए, या चाहे प्रशंसा कीजिए, भगवान के नियम को आप अपने अनुकूल नहीं बना सकते हैं। भगवान का जो नियम है वो उन्हीं के अनुसार बदला जा सकता है। तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की इच्छा है, भगवान ने हमें आदेश दिया है, तब राजपाट स्वीकार कीजिए और प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ बनिए। भगवान के आदेशानुसार प्रकृति के सारे कार्यकलाप होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छानुसार कार्य करने की भगवान छूट देते हैं, कि उनके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। यह भी भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है। भगवान ने यह भी नियम बनाया कि अनेक प्रकार के देहधारी हैं, अपने देह के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं, कुछ ऐसे हैं जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, अल्पजीवी। कुछ हैं जो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, कुछ हैं 400 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जैसे कछुआ है 400 वर्ष जीवित रहता है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो हजारों वर्ष, जैसे कलकत्ता के बोटानिकल गार्डन में एक बरगद का वृक्ष है 6000 वर्ष पुराना। तो भगवान के विधि विधान के अनुसार जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न समय से भिन्न भिन्न कार्य करता है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। वैज्ञानिक लोग दावा करते हैं कि हम जल बना सकते हैं, हम मृत्यु को भी रोक सकते हैं। वैज्ञानिक लोग यह भी दावा कर सकते हैं कि हम बुढ़ापा को टाल सकते हैं, वही वैज्ञानिक मर जाते हैं। जो वैज्ञानिक कहता है, एक वैज्ञानिक था कहता था कि हम ऐसा खोज कर रहे हैं कि लोग बूढ़ा होंगे ही नहीं, तब तक कुछ समय बाद वो व्यक्ति ही मर गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान का नियम है उसको वैज्ञानिक अपने क्षुद्र बुद्धि से क्या बदल सकते हैं। जो वैज्ञानिक है वो भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं, जो कुछ भी वो बनाते भी हैं कहाँ से, वो वस्तु भी भगवान के ही ईश्वर प्रदत्त वस्तु का ही उपयोग करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोग जल बना देते हैं H2O, हाइड्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन दोनों को संक्रमित करके जल बनाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कितना जल बना सकते हैं, कि आप उतना जल बना सकते हैं जितनी आवश्यकता है खेती के लिए, पीने के लिए, या समुद्र में अपार जल है उतना जल बना सकते हैं। हम भगवान के कार्यों का अनुशीलन अनुकरण नहीं कर सकते हैं। भगवान अद्भुत कर्मा है जो समुद्र में विशाल जल भर कर रखा है, रिजर्वियर ऑफ वाटर। भगवान समुद्र में जल को संचय करके रखे हैं और उसी को जरूरत पड़ता है तो बड़ा फिल्टर प्लांट है। भगवान का कोई फिल्टर इतना बड़ा इतना नहीं है, इतना बड़ा फिल्टर प्लांट है कि समुद्र के पानी को ले जाते हैं ऊपर और उसी को वाष्प बना करके फिर मधुर जल के रूप में वर्षा भगवान करते हैं। क्षारम जलम बारी मुचह पिबंती, खारे जल को सूर्य पी करके मधुर जल वर्षा करते हैं। ये भगवान के नियंत्रण में, भगवान के नियंत्रण में सब लोग हैं। शिव ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े नियंत्रक हैं, देवता हैं, सब उनके नियंत्रण में हैं। तो सूर्य को भगवान ने कहा कि तुम फिल्टर करो एक कार्य, तो खारे जल को भी पी करके मधुर जल के रूप में वर्षा कर देते हैं। जब वर्षा होता है तो चारों तरफ जल, जैसे शावर, हम बाथरूम में शावरिंग लेते हैं, शावर खोलकर स्नान करते हैं, लेकिन वर्षा होता है तो कितना कई प्रदेश में पूरा लगता है कि भगवान शावर खोल दिए हैं, चारों तरफ बूंदे बूंदे, बराबर बूंदे गिरती हैं। अब विचार किए वर्षा चारों तरफ बूंदे ऐसे गिरते हैं जैसे बाथरूम से शावर में पानी गिरता है, तो भगवान का कितना बड़ा शावर है, कितना बड़ा फिल्टर प्लांट है। वो भी समुद्र के पानी को नीचे से ऊपर ले जा करके मधुर जल के रूप में, क्षारम जलम बारी मुचह पिबंती तदेव कृत्वा मधुरम बमंती, मधुर जल के रूप में वर्षा कर देते हैं। ऐसे भगवान के कार्यों का कोई सामान्य जीव अनुकरण करना चाहे तो नहीं कर सकता है। जैसे चींटी अगर चाहे तो समुद्र को पार करना तो कर पाएगी, नहीं नहीं कर पाएगी। तो यहाँ के क्षुद्र जीव चींटी के समान है, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे बड़े बड़े ज्ञानी हो, तपस्वी हो। तात्पर्य में ब्रह्मा जी के श्लोक में कहते हैं कोई योग बल से, तप बल से, ज्ञान बल से, ऐश्वर्य से, किसी भी बल से भगवान को का परिमाण नहीं निकाल सकता है या भगवान के साथ चुनौती नहीं दे सकता है। बड़े बड़े राजा जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ये लोग भी भगवान को चुनौती दे रहे थे लेकिन नहीं दे पाए। भगवान की सत्ता जो है असीमित है, अपरिमेय है, जिसका कोई आकलन भी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के लोग वैज्ञानिकों को बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, या डॉक्टर को लोग बोलते हैं कि दूसरा भगवान, लोग बोलते हैं डॉक्टर दूसरा भगवान है, जीवन देते, क्या जीवन दे सकता है। डॉक्टर भी कभी कभी फेल हो जाते, डॉक्टर कहता है कि अब ये ठीक हो जाएंगे, अब कंट्रोल में है, अब कोई चिंता की बात, तब तक पेशेंट मर जाता है। कभी डॉक्टर कहता है कि पेशेंट अब मरने वाला है, ले जाइए दो दिन में, लेकिन वो पेशेंट बच जाता है, बहुत ऐसा उदाहरण है। तो डॉक्टर दवा क्या बचा सकता है, भगवान ही किसी को बचाने वाले हैं, किसी को मरने वाले हैं। वैज्ञानिक के ऊपर लोग गर्व करते हैं कि वैज्ञानिक लोग ये कर रहे हैं। एक आदमी कहा हमसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों से तो अच्छा बहुत गलत सबका। एक बार बस में हम लोग जा रहे थे तो एक लड़का कहा कि आप लोग भीख मांगते हैं, आप लोगों से तो अच्छी वेश्याएँ हैं। तो हम मैं था प्रताप रुद्र, तो बार बार यही बोलता था। तो वो कह दिए कि आप जब ये अच्छा है तो अपने माँ बहन को भी उसी व्यवसाय में लगा दो। तो भड़क गया वो वो बार बार कहता था कि आप लोगों से तो अच्छी वेश्याएँ हैं। तो प्रताप रुद्र कहे कि अपने माँ बहन को उस काम में ही लगा दो तुम, अच्छा है तो, आप लोग तो भीख मांगते हैं। तो मैं कहा कि हम लोग भीख नहीं मांगते हैं। मैं कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, खेती है, गौशाला है, स्वीट स्टॉल है, पुस्तक वितरण होता है, सब साधु लोग तो अनेक कार्य में लगे रहते हैं। कोई भीख मांगने वाला, चाय मांगने वाले साधु नहीं है हम लोग, क्या सोचते हो। तो अंग्रेजी में बोलने लगा, तो गोवा में रहता था। तो मैं कहा कि व्हाट यू थिंक, आई एम ऑल्सो लिविंग इन मुंबई, रास्कल इफ यू से मोर देन आई कैन कट योर टंग, ऐसे जब बोला ना और पॉकेट में हाथ लगाया। व्हाट यू थिंक्स, डोंट थिंक आई एम ओनली साधु भिखारी, आई एम ऑल्सो स्टेइंग इन मुंबई, इफ यू स्पीक मोर देन आई कैन कट योर टंग। जब ऐसे पॉकेट में हाथ लगाया तो चिल्ला करके बस से कूद कर भाग गया, ऐसा चिल्लाया वो, इतना चिल्लाया कि सब लोग हो गए। बोले अरे आप लोग तो साधु हैं। मैं कहा साधु हैं लेकिन देखना कितना बदमाशी कर रहा था, कितना देर से, कितना सहन करे, अतिशय हो गया तब जो है। तो पॉकेट में से हाथ लगाया, मैं छोटा चाकू लिया था, ऐसे भागा, ऐसे चिल्लाते हुए चलती बस में ही कूद गया। तो भगवान जो है, ऐसे लोग भगवान को भी चुनौती देते हैं, लेकिन भगवान को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। जब वैज्ञानिक लोग भोजन करते हैं लेकिन कितना उस भोजन का बाई प्रोडक्ट केमिकल शरीर में बनता है, कितना प्रतिशत मल मूत्र मांस मज्जा हड्डी या खून, क्या क्या अनेक चीज़ बनते हैं, जानते नहीं जानते हैं। खून कैसे बनता है, कैसे शरीर में अनेक आयरन है, कैल्शियम है, कितना केमिकल है, वैज्ञानिक जानते नहीं जानते हैं। गाय घास खाती है, कैसे दूध बनता है, आप घास खाएंगे तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। वैज्ञानिक को कहा जाए कि देखो तुम बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो तो घास से दूध बना दो, बना सकते, नहीं बना सकते। जो भगवान का सृष्टि है, जो भगवान का क्रिएशन, इसको ही वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पाए हैं, ये अपने आप को ही नहीं समझ पाए कि इसमें कैसे सारे अंग कार्य कर रहे हैं, कैसे भोजन से ही शरीर में हर अंगों में शक्ति मिले, इसी को नहीं समझ पाए हैं। तो इस अध्याय के इस श्लोक में यही कहा गया कि भगवान को कोई भी, चाहे शारीरिक बल से, तप से, ज्ञान से, ऐश्वर्य से, किसी भी तरह से भगवान को चुनौती नहीं दे सकता है। भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। ब्रह्मा जी कहे कि भगवान की इच्छा है तो आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि उनकी आज्ञा के अधीन ही सारे देवता हैं, स्वयं मैं हूँ, शिव जी हैं, इंद्र हैं, और आपके पिताश्री भी उन्हीं के आदेश से कार्य करते हैं, आपके गुरु श्री नारद मुनि भी उन्हीं के आदेश के कार्य करते हैं, सूर्य भी उन्हीं के भय से ताप देते हैं। जैसे भगवान कपिल के मत भयात बाति बातोयम मृत्यु शर्ति मत भयात वर्षति इंद्रो दहत यज्ञ मृत्यु शर्ति मत भयात। भगवान के भय से सारे लोकपाल दिक्पाल लोग कार्य करते हैं, उनकी इच्छा उनकी आज्ञा ही पालन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें भगवान का आदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी इसमें यही प्रिय व्रत को कह रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।